एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते। आज हम एक ऐसी सोच पर बात करने वाले हैं जो आपको न मतलब रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगी।
हाँ बिल्कुल।
ये जय कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं का एक संकलन है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ, या फिर गुजराती में कहें तो जीवननु रूपांतरण।
हाँ, और ये कोई ऐसी टिपिकल किताब नहीं है, है ना? बल्कि कृष्णमूर्ति के अलग अलग समय पर दिए गए जो भाषण थे या बातचीतें थीं, उनका कलेक्शन है। खासकर वो बातें जो उन्होंने युवाओं के साथ की।
सही।
और आज के दौर में ये सवाल कि हम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हैं, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्यों?
बिल्कुल। आजकल आप देखें तो हर तरफ भाग दौड़ है, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की।
हाँ,
ये बातें हमें पूछती हैं, क्या ये दौड़ ही सब कुछ है? हमारी जिंदगी में हमारी भूमिका या रोल क्या सिर्फ समाज तय करेगा, या हमारे असल लक्ष्य क्या होने चाहिए? मतलब ये सीधे सीधे हमारे जीने के तरीके पर ही सवाल उठाता है।
तो चलिए इसी गहरी सोच में आज थोड़ा उतरते हैं, लेकिन पहले जरा जय कृष्णमूर्ति को जान लें। ये कौन थे आखिर?
जय कृष्णमूर्ति, जिनका जीवन काल 1895 से 1986 तक रहा, वो एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, अलग किस्म के विचारक थे और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी।
हाँ,
उनकी खासियत थी कि वो किसी देश, धर्म या विचारधारा के दायरे में मतलब बंध कर नहीं सोचते थे, बिल्कुल खुले विचार।
और उनकी अपनी जिंदगी की कहानी भी तो कमाल की है। भारत में पैदा हुए और बचपन में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम की एक संस्था थी।
हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी।
उन्होंने इन्हें पहचान लिया और भविष्य का विश्व गुरु बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। सोचिए जरा, एक बच्चे पर कितना बड़ा बोझ डाल दिया गया होगा।
सही कहा। और यही उनकी कहानी के एक जबरदस्त मतलब एक नाटकीय मोड़ आता है। 1929 में जब वो पूरी तरह तैयार थे इस भूमिका के लिए, उन्होंने अचानक सब कुछ छोड़ दिया।
सब कुछ?
हाँ, अपने लिए जो संगठन बनाया गया था, ऑर्डर ऑफ द स्टार, उसे भंग कर दिया और कहा सत्य एक पथहीन भूमि है।
पथहीन भूमि मतलब?
मतलब ये कि सच तक पहुंचने का कोई तय रास्ता, कोई गुरु, कोई संगठन नहीं हो सकता। आपको अपना रास्ता खुद खोजना होगा।
वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। मतलब उन्होंने हर तरह के भारी अधिकार, चाहे वो गुरु हों, शास्त्र हों, संगठन हों, सबको मानने से इनकार कर दिया।
बिल्कुल।
और फिर करीब 60 साल तक दुनिया भर में घूम घूम कर लोगों से बात की,
बिल्कुल,
उनके साथ मिलकर जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं उनको खंगाला।
बिल्कुल
वो जवाब देने वाले गुरु की तरह नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं, एक साथी खोजी की तरह। इसीलिए उनकी बातें इतनी सच्ची और सीधी लगती है ना। वो कोई किताबी ज्ञान नहीं बांट रहे थे।
हाँ, अनुभव से बोल रहे थे।
हाँ, अपने जीवन के अनुभव और अपनी गहरी समझ से बोल रहे थे। उन्होंने तो खुद उस भूमिका को नकारा जो दुनिया ने उन पर थोपी थी।
तो फिर ये संकलन, ये किताब आखिर है क्या? आपने कहा ये कोई ऐसे बने सफल टाइप की गाइड नहीं है।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसे आप एक आईना समझ सकते हैं। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हम असल में जी कैसे रहे हैं।
अच्छा।
कृष्णमूर्ति का मुख्य तर्क, आप कह सकती हैं, ये है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां, जैसे गुस्सा, डर, जलन, अकेलापन, ये बाहर की दुनिया से ज्यादा हमारे अंदर की कंडीशनिंग से पैदा होती है।
कंडीशनिंग यानी कि वो आदतें, वो सोच जो समाज, परिवार, धर्म हमें बचपन से सिखाता है, वो सब।
हाँ, वही। हम अनजाने में एक तरह की मशीन की तरह जीते हैं, उन्हीं पुरानी धारणाओं, महत्वाकांक्षाओं और डरों के हिसाब से जो हमें सिखाए गए हैं। हमें लगता है हम आजाद हैं, पर असल में हम समाज के दिए हुए रास्ते पर ही चल रहे होते हैं। जैसे हमें लगता है सफलता का मतलब है बहुत पैसा कमाना या मशहूर होना, क्योंकि समाज यही कहता है।
हाँ बिल्कुल।
कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यही असली सफलता है? क्या यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए?
तो ये किस बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं?
हमारे अंदर के बंटवारे की तरफ। एक तरफ हम असल में जो हैं और दूसरी तरफ हमें जो लगता है कि हमें होना चाहिए, इसके बीच एक लड़ाई चलती रहती है ना?
हाँ, ये तो होता है।
और हम बाहरी चीजों से समाधान ढूंढते हैं, कभी राजनीति में, कभी धर्म में, कभी किसी गुरु में। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली समस्या हमारे मन की उलझन है।
अच्छा।
और जब तक हम उससे नहीं सुलझाते, बाहर कुछ नहीं बदलेगा।
और उनका रास्ता क्या है फिर? कोई मंत्र, कोई टेक्निक, कुछ बताते हैं वो?
नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। उनका रास्ता है अपने मन को, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कामों को हर पल बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए, बस देखना,
बस देखना।
हाँ, पूरी जागरूकता के साथ। इसे वो चुनाव रहित जागरूकता कहते हैं। ये मुश्किल है हाँ, लेकिन इसी से खुद को समझने का दरवाजा खुलता है। और जब हम खुद को समझते हैं, तभी सच्ची आज़ादी, समझ और शायद प्यार भी मुमकिन होता है। ये संकलन हमारे तयशुदा लक्ष्यों जैसे सफलता, सुरक्षा, खुशी, इन पर ही सवाल खड़े करता है। क्या ये लक्ष्य हमें वाकई शांति दे सकते हैं?
चलिए अब कुछ खास बातों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पहला सवाल तो वही है जो किताब के शीर्षक में, हम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हैं। ये सिर्फ करियर चुनने जैसा छोटा सवाल नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे पूरे होने का, हमारे वजूद का सवाल है।
हाँ,
कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ज्यादातर लोग जैसे नींद में चल रहे हैं, जिंदगी की सतह पर ही जीते हैं। अपने अंदर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इसके धोखे और झगड़ों को देख ही नहीं पाते। चुनौती ये है कि क्या हम बाहरी जवाबों का इंतजार किए बिना, किसी किताब, किसी गुरु के बताए बिना, खुद इस सवाल से जूझ सकते हैं? क्या हम ईमानदारी से देख सकते हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा क्या है, हमारी भूमिका, रोल क्या है, और हमारे असली लक्ष्य, गोल क्या है?
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, और इसी से जुड़ा है अगला मुद्दा, सफलता की दौड़ और महत्वाकांक्षा। आजकल तो भाई महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात मानी जाती है ना?
बिल्कुल, समाज तो यही कहता है, लेकिन कृष्णमूर्ति इसे जहर कहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ बनने की इच्छा, अमीर, मशहूर, शक्तिशाली, यहाँ तक कि आध्यात्मिक बनने की इच्छा, यही सारी मुसीबत की जड़ है।
जहर, इतनी सख्त बात।
हाँ, क्योंकि ये इच्छा हमें दूसरों से तुलना करने, मुकाबला करने, जलने और यहाँ तक कि क्रूर बनने पर मजबूर करती है। ये अंदर ही अंदर हिंसा पैदा करती है।
अरे बाप रे, ये तो हमारी पूरी परवरिश के ही खिलाफ जा रहा है। हम सब पर कुछ बनकर दिखाने का कितना दबाव रहता है, स्कूल से ही शुरू हो जाता है। तो
सही कहा।
तो फिर करें क्या, महत्वाकांक्षा नहीं तो क्या?
कृष्णमूर्ति का सुझाव है, वो काम ढूंढो जिससे तुम्हें सच में प्यार हो। जब तुम किसी काम को सिर्फ नतीजे के लिए नहीं, बल्कि उसे करने के आनंद के लिए करते हो, तब महत्वाकांक्षा की जरूरत ही नहीं रहती।
अच्छा।
हाँ, तब तुम उस काम में पूरी तरह खो जाते हो और वहीं से असली रचनात्मकता और समझ पैदा होती है। कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं बचती।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करना शायद मुश्किल हो। इसी से जुड़ा सवाल है, सही आजीविका यानी सही काम क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना काफी है?
नहीं, कृष्णमूर्ति के लिए सही आजीविका का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है ऐसा काम करना जो दुनिया में दुख और झगड़ा ना बढ़ाए।
जैसे?
जैसे मान लीजिए कोई हथियार बनाने वाली कंपनी में काम करता है, या कोई ऐसा काम जो लोगों को बांटता हो, वो सही आजीविका नहीं हो सकती, भले उसमें कितने भी पैसे क्यों ना मिले।
अच्छा, और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम सही है, हमारे लिए सही है?
ये खुद को समझने से पता चलेगा। जब तुम अपनी कंडीशनिंग, अपने डर, अपनी इच्छाओं को समझने लगते हो, तब तुम वो काम चुन सकते हो जो तुम्हारी असलियत से मेल खाता हो। न कि सिर्फ समाज के दबाव या पैसे की लालच से चुना गया हो। आप सोचिए, आज कितने लोग अपना करियर इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें उसमें सच में दिलचस्पी है, और कितने सिर्फ इसलिए कि उसमें सुरक्षा है या माँ बाप का दबाव है।
हाँ, ये तो है।
कृष्णमूर्ति हमें अपनी भूमिका, रोल को समाज की नजरों से नहीं, अपनी समझ से देखने को कहते हैं, अपना लक्ष्य, गोल खुद तय करने को कहते हैं।
अब आते हैं रिश्तों पर, ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, इस बारे में कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं?
वो यहाँ भी हमें आईना दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारे ज्यादातर रिश्ते प्यार पर नहीं टिके होते।
प्यार पर नहीं तो किस पर?
वो टिके होते हैं एक दूसरे की जरूरत पूरी करने पर, सहारे पर, और सबसे ज्यादा अकेलेपन के डर से बचने पर। हम दूसरे इंसान को अपनी खुशी या सुरक्षा का जरिया बना लेते हैं। और हम असल इंसान से नहीं, बल्कि उसकी एक छवि से रिश्ता रखते हैं, पति की छवि, दोस्त की छवि, बच्चे की छवि। इसीलिए रिश्ते अक्सर बोझ लगने लगते हैं, उनमें ऊब और झगड़े आ जाते हैं।
ये सुनना थोड़ा मुश्किल है, पर शायद इसमें सच्चाई है। तो फिर सच्चा प्यार क्या है उनके हिसाब से?
उनके अनुसार सच्चा प्यार कोई चिपकाव या निर्भरता नहीं है, वो कोई लेन देन नहीं है। ये तभी मुमकिन है जब मैं यानी अहंकार अपनी मांगों और अपनी यादों के साथ बीच में ना हो।
अहंकार ना हो?
हाँ, ये बस दूसरे इंसान पर पूरा ध्यान देना है बिना किसी स्वार्थ के। हमारी आम समझ से ये बहुत अलग है, जहाँ प्यार में अक्सर कब्जा करने की भावना और उम्मीदें शामिल होती हैं, है ना?
हाँ, होती तो हैं। अच्छा, और डर,
डर का क्या करें, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, मौत का डर, ये तो सबको लगता है।
कृष्णमूर्ति कहते हैं डर की जड़ है हमारा सोचना और समय। हम या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं जो हो चुका, या भविष्य की कल्पनाओं में जो हो सकता है।
अच्छा।
डर वही से पैदा होता है, जैसे नौकरी छूट जाने का डर या बीमार पड़ने का डर, ये सब भविष्य की सोच है जो अभी है नहीं।
तो डर से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, यही सिखाया जाता है हमें तो?
नहीं, कृष्णमूर्ति कहते हैं लड़ने से डर और मजबूत होता है। वो कहते हैं डर को समझो, जब डर लगे तो उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, उसका विश्लेषण भी मत करो।
तो करें क्या?
बस उसे देखो जैसे वो है वैसा ही, बिना कोई नाम दिए, बिना अच्छा बुरा कहे, अपना पूरा ध्यान उस एहसास पर ले आओ। जब तुम उसे पूरी तरह देखते हो बिना लड़े, तो तुम्हें पता चलता है कि वो सिर्फ एक विचार है, असलियत नहीं, और धीरे धीरे वो अपनी पकड़ खो देता है।
ये तो बहुत अलग नजरिया है डर को देखने का। और आखिर में कंडीशनिंग और विश्वास की बात, हम सब किसी न किसी दायरे में बंधे हैं, धर्म, देश, परिवार, ये तो सच है।
हाँ, हमारी पूरी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे काम, सब पर हमारी कंडीशनिंग का गहरा असर होता है। हम हिंदू, मुस्लिम, भारतीय या किसी और पहचान के चश्मे से दुनिया को देखते हैं। और विश्वास, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक, वो हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देते हैं, अनिश्चितता की दुनिया में एक सहारा सा लगता है।
हाँ, लगता तो है। फिर अलग अलग विश्वासों में से चुनने की आजादी?
नहीं, कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची आजादी ही सभी विश्वासों से आजादी, उस ज्ञात से आजादी जिससे हम अपनी पहचान बनाते हैं।
सभी विश्वासों से?
हाँ, इसके लिए लगातार जागरूक रहने की जरूरत है, ये देखने की कि हमारी कंडीशनिंग कैसे हमारे हर विचार और काम में झलक रही है। ये कोई मंजिल नहीं है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है खुद को जानने की।
तो अगर हम सब इन सब बातों का निचोड़ निकालें तो कुछ मुख्य संदेश क्या होंगे? पहला तो यही लगता है कि हमें अपनी कंडीशनिंग, अपनी पुरानी आदतों और सोच के दायरे को पहचानना होगा और उससे आजाद होना होगा, है ना?
बिल्कुल।
भारत में हम अक्सर देखते हैं कैसे परिवार की उम्मीदें या समाज के नियम हमारे फैसले तय करते हैं, ये सब उसी कंडीशनिंग का हिस्सा है।
सही कहा। दूसरा बड़ा संदेश है, देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक ही है।
ये थोड़ा मुश्किल है समझना।
हाँ, मतलब जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्से से अलग नहीं हूँ, मैं ही गुस्सा हूँ। जब हम इस गैर द्वैत, नॉन ड्यूअलिटी को महसूस करते हैं तो अंदर की लड़ाई खत्म हो जाती है। अगली बार जब कोई निराशा या गुस्सा आए तो उसे अपने से अलग मानने के बजाय ये देखना कि वो भाव भी मैं का ही एक रूप है, शायद उसे समझने में मदद करे।
अच्छा। तीसरा, किसी भी बाहरी सत्ता को आंख बंद करके ना मानना, चाहे वो गुरु हो, किताब हो या कोई विचारधारा।
हाँ, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि किसी के पीछे चलना आपकी अपनी समझ को खत्म कर देता है। असली अधिकार आपकी अपनी सीधी समझ और अनुभव है।
ये बात हमारे समाज के लिए, जहां गुरुओं को मानने की परंपरा है, काफी सोचने वाली है।
बिल्कुल। चौथा, महत्वाकांक्षा और तुलना जहर की तरह है, कुछ बनने की दौड़ अंदरूनी झगड़ा पैदा करती है। असली मजा और खूबी किसी काम को प्यार से करने में है, दूसरों से आगे निकलने में नहीं।
ये तो आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया के बिल्कुल उलट है। भारत में पढ़ाई और नौकरी की जो जबरदस्त रेस है, उसे देखते हुए ये बात बहुत मायने रखती है।
सही। और पांचवा, ध्यान का मतलब कोई खास तकनीक नहीं, बल्कि अपने मन की हरकतों को बिना किसी चुनाव, बिना किसी जजमेंट के चुपचाप देखना है। बस देखना और सुनना, इसे वो सुनने की कला भी कहते हैं।
ये आजकल के जो मेडिटेशन ट्रेंड्स हैं उनसे काफी अलग लगता है।
हाँ, और इस संकलन में ऐसी कई लाइनें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे पहली, सत्य एक पथहीन भूमि है, किसी पंथ या धर्म से उस तक नहीं पहुंचा जा सकता।
हाँ, ये हमने पहले भी बात की, मतलब सच का कोई बना बनाया हाईवे नहीं है, हर किसी को अपनी पगडंडी खुद बनानी होगी।
बिल्कुल। दूसरी, दृष्टा ही दृश्य है, जैसा हमने कहा, देखने वाला और अनुभव एक ही हैं। जब ये समझ आता है तो अंदर का टकराव मिट जाता है।
तीसरी वाली कौन सी है?
तीसरी, जो मुझे बहुत असरदार लगती है, गहन रूप से बीमार समाज के साथ अच्छी तरह से समायोजित होना स्वास्थ्य का पैमाना नहीं है।
वाह, ये तो गहरी बात है।
है ना, मतलब अगर समाज ही गलत रास्ते पर जा रहा है, लालच, झगड़े, दिखावे के रास्ते पर, तो उसमें फिट हो जाना कोई समझदारी नहीं। असली समझदारी तो उस रास्ते पर ही सवाल उठाना है।
और चौथी?
चौथी, असीम को समझने के लिए मन को असाधारण रूप से शांत, स्थिर होना चाहिए। यानी सच या ईश्वर या जो भी कह लें, वो शोर मचाते हुए मन में नहीं मिलेगा, वो गहरी शांति में ही महसूस होता है, और ये शांति जबरदस्ती से नहीं, समझ से आती है।
ये सब बातें गहरी तो हैं, पर सवाल उठता है कि रोज की जिंदगी में इन्हें कैसे उतारें? कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं क्या?
हाँ, देखिए, ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है, लेकिन छोटे छोटे तरीकों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे अपनी पढ़ाई या काम को लेकर।
हाँ,
सिर्फ नंबर या प्रमोशन के पीछे भागने के बजाय खुद से पूछें, क्या मुझे ये काम वाकई पसंद है, या क्या इससे दुनिया में कुछ अच्छा हो रहा है? सीखने का मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना ना हो, बल्कि समझना हो।
और रिश्तों में?
रिश्तों में हम ध्यान दे सकते हैं कि कहीं हम सामने वाले की छवि से तो नहीं जुड़ रहे, असली इंसान से जुड़ रहे हैं या अपनी बनाई हुई इमेज से।
अच्छा।
जब जलन या अधिकार जताने का मन करे तो उसे प्यार समझने की बजाय अपनी अंदरूनी कमी की तरह देखने की कोशिश करें। और हाँ, दूसरों को ध्यान से सुने, बिना अपने जवाब पहले से तैयार किए, बस सुने।
अपनी भावनाओं के साथ भी कुछ कर सकते हैं? गुस्सा, डर?
बिल्कुल, जब गुस्सा या डर महसूस हो तो उसे दबाने या फौरन रिएक्ट करने के बजाय बस महसूस करें। देखें कि शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या विचार आ रहे हैं, बिना अच्छा बुरा कहे। अक्सर सिर्फ देखने भर से उसकी ताकत कम हो जाती है।
ये कोशिश करने लायक है।
और रोजमर्रा के कामों में जागरूकता ला सकते हैं, बर्तन धोते हुए, चलते हुए, बात करते हुए, क्या हम पूरी तरह वहीं मौजूद हैं या हमारा मन कहीं और भाग रहा है? अपने विश्वासों पर भी सवाल करें, मैं ये क्यों मानता हूँ, क्या ये मेरा अपना अनुभव है या सिर्फ सुनी सुनाई बात है? इससे वो हम वर्सेस वो वाली सोच कम होती है, थोड़ी विनम्रता आती है।
तो कुल मिलाकर इस बातचीत से क्या सीख लेकर जा रहे हैं? मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यह है कि खुद को जानना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और इसी से सच्ची आजादी मिलती है।
हाँ,
ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को देखने का, उसे जीने का एक न्योता है। असली क्रांति बाहर नहीं, अंदर लानी होगी।
और मुझे जो बात सबसे ज्यादा अपील करती है वो है स्वतंत्रता का विचार, कि आजादी कोई भविष्य में मिलने वाली चीज नहीं है, वो इसी पल में मौजूद है, अगर हम अपने मन को बिना किसी पर्दे के, बिना किसी जजमेंट के देख सकें। और वो महत्वाकांक्षा वाली बात भी हमारी संस्कृति से कितनी अलग है, पर सोचने पर मजबूर करती है कि शायद इसी में ज्यादा सुकून हो, बिना किसी रेस के जीना।
अच्छी सुरक्षा बाहर की चीजों, नौकरी, रिश्ते, विश्वास से नहीं आती, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को समझने और अनिश्चितता को गले लगाने से आती है। तो अगली बार जब कोई डर या असुरक्षा महसूस हो, तो उस पल बिना जज किए अपने मन को देखने के लिए आप आज कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।